بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم اخواتي وحضرات. کسی صاحب نے پوچھا ہے کہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جیسے جیسے آپ سلوک کے سفر میں تھوڑا سا بھی آگے بڑھتے ہیں تو آپ کو گھر والوں کی طرف سے خصوصاً والدین یا بالخصوص بیگم کی طرف سے ایک مخالفت یا غیر ضروری مسائل اور دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کیا اس کیفیت کو اپنے مرشد کو بیان کر دینا چاہیے اور اس معاملے میں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے کہ نوبت انتہا تک نہ پہنچے؟ اس کے اوپر دو طرح کی بات ہو سکتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ مرشد سے بیان کر کے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لیجئے, اس سے آپ کی تکلیف میں کمی واقع ہو جائے گی. اور اگر آپ کے مرشد اس مزاج کے ہیں جس مزاج کے میرے مرشد صاحب تھے تو پھر ڈانٹ پڑ جائے گی سامنے سے کہ برداشت کرو اس کو. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مرشد صاحب کا مزاج کیسا ہے, وہ ان کے اپنے رویے زندگی میں کیا ہیں. میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ برداشت کرنا زیادہ بہتر ہے, آدمی صبر سے کام لے اور ریئیکٹ نہ کرے سامنے سے. تو اس سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اندر تکلیف بڑھتی ہے, انسان کے اندر دکھ سبا ہو جاتا ہے. تو چونکہ اس تکلیف اور دکھ کو وہ خاموشی سے برداشت کر رہا ہے تو جب رب کے حضور جھکتا ہے تو وہ جو دکھ اور تکلیف ہے اس کی, وہ رب کے ساتھ اس کا تعلق کو بڑا گہرا کرتی ہے اور یوں سفر تیز ہو جاتا ہے. اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے. اور میں تو یہی مشورہ دوں گا کہ اس کو نہایت خاموشی کے ساتھ بغیر کسی طرح بھی ریئیکٹ کیے, بلکہ وہ جو کہتے ہیں کہ ود اے اسمائلنگ فیس, اس کو برداشت کر لیجئے. ڈنڈے بہت پڑتے ہیں, اس میں شک نہیں ہے. اور صرف یہی نہیں, اس سے اگلی سٹیج پہ جب جاتا ہے انسان تو عین جو عبادات کا ٹائم ہے اس وقت مہمان آ جائیں گے, آفس کا کوئی ایسا ضروری کام نکل آئے گا کہ وہ اس کو چھوڑ نہیں پا رہا ہوگا آدمی. وہ ایک خاصا سخت امتحان ہوتا ہے, اس کو ہینڈل کرنا پڑتا ہے انسان کو. وہ زیادہ دشوار ہو جاتا ہے کہ وقت پر عبادت بھی کرنی ہے اور وہ تمام چیزیں سامنے یہ آتی ہیں، انسان کو فیس کرنا پڑتا ہے، لیکن وہ امتحان ہے، اور ہم میں سے کوئی بھی آدمی امتحان کیسے ہی کیوں نہ ہو اس میں فیل نہیں ہونا چاہے گا. تو ہم ان چیزوں کو برداشت کر لیں بڑی خوشی کے ساتھ، اور یہ انشور کر لیں کہ برداشت اس انداز میں انہیں کیا جائے کہ حرج نہ ہو ہمارا، جو بنیادی مقصد ہے وہ ڈیفیٹ نہیں ہونا چاہیے کسی طرح بھی. ایک اور صاحب نے پوچھا ہے کہ آپ مناسب سمجھیں جن سلسلوں سے آپ کو عنایات، فیض اور خلافت عطا ہوئی ہے ان کے بارے میں تفصیل سے بتا دیں. یہ کوئی زیادہ اچھی صحت مند چیز نہیں کہ انسان اپنی ذات کے بارے میں چیزیں ڈسکس کرتا رہے. میں نے تو اپنے مرشد صاحب سے یہی سیکھا تھا کہ اپنی ذات کو ڈسکس نہ کیا جائے. اس میں کئی ایک مقام آئیں گے جہاں خود نمائی کا پہلو سامنے آ جائے گا. اگر آپ کی نیت نہیں بھی ہے خود نمائی کی، پھر بھی دوسروں کو محسوس یہ ہوگا کہ انسان خود نمائی میں چلا گیا. تو بہتر یہی ہے کہ انسان اپنی ان چیزوں کو ڈسکس نہ کرے. تو اس لیے میں اس کے لیے تو آپ سے معافی چاہوں گا کہ میں شاید اپنی ذات کے بارے میں شاید ڈسکس نہ کر پاؤں. میں یہ غیر ملک سے کہیں سے ای میل کے ذریعے سے سوال آیا ہے کہ سم ون آسک می کوشچن اباؤٹ چلڈرن بورن وتھ ٹرمینل ڈیزیزز اینڈ ڈائٹ ینگ گوئنگ تھرو پین اینڈ مزری. اف گاڈ ایگزسٹ دین واٹ از دی پرپز آف دس؟ آئی کوڈنٹ آنسر ان اے سیٹسفیکٹری وے. پلیز ہیلپ وتھ دس کوئری. اس کا صحیح جواب قرآن میں وہ واقعہ ہے جو جناب خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے. اس سے ہمیں یہ بات بڑی واضح ہو جائے گی کہ یہ کیا ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم اپنے عقلی گھوڑے دوڑاتے رہیں، آپ اس واقعے کو خود پہلے پڑھ لیجئے، اس کو سمجھ لیجئے، اور جن صاحب نے یہ سوال کیا ہے آپ سے ان کے سامنے بھی وہ واقعہ رکھ دیجئے، اور اگر ان کو سمجھنے میں کوئی دقت آئے تو آپ ایکسپلین کر دیں، تو اس سے پتہ چل جائے گا، تو بڑا واضح ہو جائے گی بات، کوئی ایمبیگوٹی رہے گی نہیں. ان کا دوسرا سوال ہے کہ ان چائنیز مارشل آرٹس پریکٹیشنرز پریکٹس چینل چی انرجی وچ دے کال لائف فورس. کین یو پلیز ایکسپلین دا نیچر آف دس انرجی؟ کچھ نہیں، بڑی سادہ سی ایک بات ہے. आपने अक्सर सुना होगा लोगों को ये कहते हुए कि इंसान की कुव्वत उसके मसल्स में नहीं है बल्कि उसके जहन में है। इसकी एग्जाम्पल मैं यूं दे दूं कि जो बचपन में हम सब ये खेल खेलते रहे होंगे कि हम इसी कागज को, वाइट कागज को धूप में जितनी देर मर्जी रखे रखे तो ये ड्राई होकर अकड़ तो जाएगा, इसका मॉइस्चर एवेपरेट हो जाएगा लेकिन जलेगा नहीं। लेकिन अगर एक कॉन्वेक्स लेंस ले लें हम और उसमें से सूरज की शुआओं को गुजारते हुए इस कागज पर एक नुक्ता बना लें जहाँ वो रेज कंसंट्रेट किए हुए हैं तो कागज जल उठेगा, आग लग जाएगी इसको। ये बहुत यंग एज में हम सभी ये खेल खेलते रहे हैं। हालांकि सूरज की रोशनी वही है लेकिन जब हम उसे एक पॉइंट पर मरकूज कर देते हैं थ्रू कॉन्वेक्स लेंस तो उसकी ताकत इतनी बढ़ जाती है कि वो आग लगा दे। तो हमारी ज़हनी कुव्वतें जो डिस्पर्स हुई हुई हैं वो डिस्पर्स फॉर्म में उतनी स्ट्रांग नहीं होती, लेकिन अगर हम इस पर कादिर हो जाएं कि हम अपने ज़हन को मरकूज कर दें एक ख़ास नुक्ते पर तो कुव्वत कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। उससे नतीजा ये होगा कि इंसान खड़ा हाथ इसकी कुव्वत से अगर ईंटों पे इसे मारे तो वो सीमेंट ब्लॉक्स को तोड़ लेगा। तो वो इर्तकाज़ है इंसान की ज़हनी कुव्वतों का और उसके नतीजे में इंसान की जिस्म की जितनी टोटल एनर्जी है वो एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेट कर जाती है बजाय डिस्पर्स हो। ये बिल्कुल ऐसा है कि अगर 1,000 रुपया है आपके पास, आप उसको 10-10, 20-20 रुपए करके मुख्तलिफ जगहों पर खर्च करें तो उसका इम्पैक्ट आपको नहीं महसूस होगा, लेकिन अगर एक ही जगह वो 1,000 रुपये आप खर्च कर दें तो उसका इम्पैक्ट एकदम आ जाएगा। तो इंसानी जहन और जिस्म की जो कुव्वतें हैं अगर वो डिस्पर्स फॉर्म में रहें तो इतनी इफेक्टिव नहीं होंगी, वो एक आम आदमी की कुव्वत नज़र आएगी आपको। लेकिन अगर हम उनका इर्तकाज़ कर दें, कॉन्सेंट्रेट कर दें उन्हें एक पर्टिकुलर पॉइंट पर तो वो शायद 1,000 गुना ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ महसूस होगी। तो वो एनर्जी जो है उसको चैनलाइज करते हैं, अल्फाज का फ़र्क है कि हम अगर साइंटिफिक ज़ुबान में बात करें तो हम ये कहते हैं कि हमने अपनी एनर्जीज को चैनलाइज कर दिया टू ए सर्टन डायरेक्शन, टू ए सर्टन पॉइंट। तो वो जो चैनलाइज हम करते हैं चीज़ों को वही खेल है सारा। तो मार्शल आर्ट्स में हम पूरी तरह कॉन्सेंट्रेट किए हुए होते हैं अपने मुखालिफ की जिस्म के उस हिस्से पर जहां हम चोट लगाना चाहते हैं। जब पूरी तरह वहां कॉन्सेंट्रेट करते हुए हिट करते हैं तो बड़ी शदीद चोट लगती है मुखालिफ को। तो उसका नाम उन्होंने वो चैनलची रखा हुआ है। Is the essence of universe vibration? If so, then what is the potential of this vibration? As every kinetic energy comes out of potential energy. जिन साहब का सवाल है अगर वो सुन रहे हों तो एक मेहरबानी फरमाएं, इसको थोड़ा सा एलिब्रेट कर दें। ये जो आपके सवाल का एक हिस्सा है कि इज द एसेंस ऑफ यूनिवर्स वाइब्रेशन, इसके बाद आपने क्वेश्चन मार्क दे दिया है, इसको जरा सा एलिब्रेट कर दीजिए ताकि इसका मैं जवाब दे पाऊं। तो इसे आप ईमेल कर दीजिएगा, नेक्स्ट संडे इंशाल्लाह फिर इसको जवाब दे दूंगा, क्योंकि ये आपका सवाल मुकम्मल नहीं है। अब इनका नेक्स्ट सवाल ये है कि देर इज ए रियल डेंजर दैट इंटेग्रेशन ऑफ ह्यूमंस एंड मशीन कुड हार्म ह्यूमैनिटी, इफ सो द पीपल इन दिस फील्ड आर रिलेटेड फील्ड प्रोसीड एंड एक्ट। ये थोड़ा सा आपने सवाल एक्सप्लेनेटरी रखिए कि वो समझ आ जाए कि आप जानना क्या चाहते हैं, तो जवाब दे पाऊं। आपके ये जो सवाल का एक हिस्सा है कि देर इज ए रियल डेंजर दैट इंटेग्रेशन ऑफ ह्यूमंस एंड मशीन कुड हार्म ह्यूमैनिटी, ये मैं जवाब आपसे अर्ज कर देता हूं। ये इस किस्म के जो खतरात होते हैं वो हमेशा मौजूद रहते हैं, उनको हम कभी भी वाइप ऑफ नहीं कर सकते किसी कीमत पे भी। चाकू की इजाद हुई है, जहां इंसान को उसने किचन में हेल्प किया है, सर्जरी में चाकू उसे हेल्प करता है, और कई एक यूजफुल पर्पसेस हैं उसके। लेकिन एक खतरा मौजूद है कि कोई भी शख्स उसको किसी ऐसे मकसद के लिए इस्तेमाल कर ले जिससे दूसरों को नुकसान पहुंचे। इसका मतलब यह नहीं कि चाकू को इजाद ही नहीं किया जाना चाहिए था। इंसान ने अपने डिफेंस के लिए, अपनी हिफाजत के लिए आर्म्स एंड एमुनिशन ईजाद किया, लेकिन उसको तबाही के लिए इस्तेमाल कर लिया गया। एक्सप्लोसिव है, उससे हम सड़कें बनाने के लिए पहाड़ों को तोड़ने का काम लेते हैं, बड़ी बड़ी चट्टानों को बारीक बजरी में कन्वर्ट करने में एक्सप्लोसिव से काम लेते हैं हम। लेकिन दूसरी तरफ इंसान की तबाही में भी वो काम आ जाता है। लेजर रीसेंट पास्ट में इजाद हुई, उसके बहुत फायदे उससे ले रहा है इंसान, जिंदगी इंसान की बहुत आसान कर दी। लेजर से इंसान चट्टाने काट लेता है, सर्जरी बड़ी बारीक सर्जरी होने लगी है, लेकिन उसका नेगेटिव इस्तेमाल भी मौजूद है। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम उस एक डर से इसको इजाद ही ना करें हम। तो मशीन्स के साथ एक खतरा जुड़ा हुआ है, लेकिन उसके फवायद बहुत ज्यादा हैं। इसका दूसरा हल इस्लाम ने दिया है कि इंसान की मॉरल वैल्यूज को इतना हाई कर दिया जाए कि वो तलवार को इस्तेमाल तो करे लेकिन पॉजिटिव पर्पजेस के लिए, किसी पर जुल्म ढाने के लिए इस्तेमाल न करे, उसका अपना जमीर उसे रोक ले। तो हम अगर तरबियत सही कर लें अपनी अपनी औलाद की तो इसका इस्तेमाल बहुत कम रह जाएगा कि वो मशीन्स जो हमें फ़ायदा दे रही हैं उसका नुकसान हमें हो सके। हम जोर इस बात पर दें कि हम अपने मॉरल्स को इम्प्रूव करें ताकि किसी चीज को हम गलत इस्तेमाल न करना पाए। तो फिर ये जो कॉम्बिनेशन है, इंटेग्रेशन जिसको आप कह रहे हैं मैन एंड मशीन्स का, वो प्रोडक्टिव होगा, उससे प्रोडक्टिव काम लिए जा सकेंगे। नुकसान उस वक्त होता है जब हम मॉरली अपने आप को डेवलप नहीं करते हैं। जिस तरह से इंसान की जहानत अगर प्रॉपरली ट्रेन्ड है, आदमी उसकी उसके मॉरल्स को डेवलप किया गया है उसके अंदर, उसकी इंटेलिजेंस हमेशा पॉजिटिव साइड में काम करेगी, लोगों के फायदे का सबब बन जाएगी। लेकिन अगर खुदा ने खास्ता किसी इंसान की ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं हुई है तो उसकी इंटेलिजेंस जहानत उसको गलत राह पर ले जाएगी। लेकिन इस खतरे के बावजूद हम जहानत को बुरा नहीं कह पाएंगे, वो हमेशा अप्रिशिएट होगी जहानत। तो मामला ये नहीं कि मशीन्स, मैन एंड मशीन्स कॉम्बिनेशन हैज़ार्डस हो जाएगा लोगों के लिए। बात यह है कि इंसान की तरबियत काउंट करेगी कि किस अंदाज में हुई है। तो जोर तरबियत पर होना चाहिए हमारा। बाकी आपके सवाल का हिस्सा कुछ ज्यादा वाजे नहीं कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, इसको वाजे कर देंगे मैं जरूर जवाब देने की कोशिश करूंगा। इनका अगला सवाल ये है कि इफ वी सीक द नॉलेज फॉर द गुड एंड बिकॉज अल्लाह एंड हिज मैसेंजर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैज डायरेक्टेड अस, वुड इट कंसिडर ए फॉर्म ऑफ इबादत? अल्लाह के अहकामात की इताअत जो हम करते हैं, वो बंदगी है अल्लाह की और बंदगी इबादत है। हमने अपनी सहूलत के लिए असल में इसके दो हिस्से कर लिए कि एक हिस्सा इबादत है, एक दुनियावी जिंदगी है, जो कि कतई तौर पर गलत है। इस्लाम में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इस्लाम में कॉन्सेप्ट तो यह है कि इंसान की पूरी जिंदगी गवर्न होनी चाहिए अल्लाह के अहकामात से। जिंदगी का कोई छोटे से छोटा काम, बड़े से बड़ा काम, इंसान की कोई एक हरकत, ये सब गवर्न होनी चाहिए उन अहकामात से जो अल्लाह ने हम पर वादे किए हैं कुरान और अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि मोमिन का सोना भी इबादत है। हम अगर अपनी जिंदगी को उन अहकामात के मातहत कर लेंगे तो हमारा सोना भी इबादत हो जाएगा। इनका अगला सवाल है कि इन रिसेंट टाइम्स लॉट्स ऑफ चेंजेस आर हैपनिंग वेरी क्विकली, हाउ डू यू सी रोल एंड फ्यूचर पाकिस्तान इन नियर मिड एंड लॉन्ग टर्म फ्यूचर? What should be the role of the people of Pakistan individually and collectively to contribute towards the future where Allah likes to see us? इस मौजू पर पहले भी कई मरतबा बड़ी डिटेल में बात हुई कि इसमें दो चीजें हैं, एक तो है लॉ ऑफ नेचर और दूसरा ये है कि डिजाइन्स ऑफ नेचर। लॉ ऑफ नेचर तो यही है कि हम गंदम बोएंगे गंदम काट लेंगे, कीकर का दरख्त लगाएंगे तो कांटे मिल जाएंगे हमें। ये तो सीधा सीधा एक ऐसी दुनिया की बात है जो कॉज एंड इफेक्ट की दुनिया है, लेकिन इसके साथ साथ कुदरत के अपने डिजाइन्स भी हैं और कुदरत जिससे चाहती है काम ले लेती है। रब ताला कादिर है हर चीज पर, वो जिससे चाहे उससे काम ले ले, हत्ता कि जो उसके मुनकर हैं उनसे भी काम लेना चाहे तो काम ले ले, वो कादिर है। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह बना है एक खास तहत के, एक मकसद के तहत वजूद में आया है, ये अपना रोल जरूर प्ले करेगा। और हमारे हम पर कॉज एंड इफेक्ट की दुनिया का वो कानून लागू होता है कि हम जैसा करेंगे वैसा भुगतेंगे फिर। तो उसके लिए अगर हम ये चाहें कि एक सही डायरेक्शन में मूव करें तो उसके लिए हमें अपने आप को दुरुस्त करना पड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला बड़ा सही रोल प्ले करेगा। सवाल है कि कुछ जहनी बीमारियां जैसे कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर इंसानी दिमाग के कुछ हिस्सों को ऐसे इफेक्ट कर जाती हैं कि ब्रेन की हेल्दी फंक्शन हमेशा के लिए ऑल्टर हो जाती है, इसके असरात पूरी उम्र चलते हैं। ऐसे इंसान किसी ट्रॉमेटिक इवेंट के बाद किसी हेल्दी इंडिविजुअल की निस्बत एक्सलेटेड फियर एंग्जाइटी इमोशनल इम्बैलेंस क्रॉनिक फटीग मेमोरी प्रॉब्लम्स ट्रबल मेंटेनिंग हेल्थ बाउंड्रीज विद पीपल जैसे मसाइल का शिकार रहते हैं। अगर किसी ट्रॉमेटिक इवेंट का होना खुदा की तरफ से होता है तो क्या रूहानियत की राह पर चलने से इंसान पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस और उसके नतीजे में आने वाली प्रॉब्लम से निजात पा सकता है? इंसान की जिंदगी में प्रॉब्लम्स तो साथ साथ चलती रहती हैं और बहुत से ट्रॉमास में से इंसान गुजरता है जिंदगी में। फर्क सिर्फ एक है कि अगर रब ताला पर यकीन और रब ताला के रहीम और करीम होने और ऐसी ही उसकी दूसरी तमाम सिफात पर दिल से यकीन है इंसान को तो फिर ये प्रॉब्लम्स ऐसे आदमी को नहीं आती हैं, ये उसी वक्त आती हैं इस किस्म की प्रॉब्लम्स, जब इंसान जुबान से तो यकीन रखता है रब ताला की इन तमाम चीजों पर, इन तमाम सिफात पर, लेकिन दिल से यकीन नहीं होता। यह है बात तल्ख और शायद बहुत सी पेशानियों पे बल भी आएंगे ये बात सुन के, लेकिन हकीकत यही है, अगर मुझे ये यकीन हो कि मेरा रब बड़ा मेहरबान है, वो मुझे बेसहारा नहीं छोड़ेगा मुश्किल वक्त में, और मुझ पर से मुसीबतें और मुश्किलें दूर फरमा देगा, तो अगर ये यकीन मेरा पुख्ता है तो मैं अपने ही जैसे किसी इंसान के पास भागा हुआ नहीं जाऊंगा कि वो कोई ऐसा अमल कर दे मेरे ऊपर, कोई तावीज़ दे दे, कोई वजीफा दे दे कि मैं इससे निकल जाऊं। तो अगर मेरा यकीन पुख्ता है तो मैं रब की तरफ दौड़ूंगा, अपने रब को पुकारूंगा कि या अल्लाह तू निजात देने वाला है इन मुसीबतों से, तो अपनी रहमत के सदके, अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके मुझसे ये मुसीबतें दूर फरमा दे। इसी तरह अगर जिंदगी में किसी ऐसी प्रॉब्लम में से गुजरना पड़ गया जो बहुत ट्रॉमेटिक थी, तो वहां भी अल्लाह पर भरोसा जो है वो मुझे संभाला दिए रखेगा कि रब ताला मेहरबान है, वो मुझे इस ट्रॉमा में से गुजार निकाल लेगा। और जिस तरह से महावरतन हम कहते हैं कि हर रात के बाद सुबह होती है, या जिस तरह हम ये कहते हैं कि अंधेरा जितना गहरा होगा उस अंधेरे से जन्म लेने वाली सुबह उतनी ही चमकीली होगी, ये भी महावरतन हम कहते हैं। तो ये जो उम्मीद है अपने रब से मुझे भलाई की, इट विल कीप मी गोइंग, फिर मैं ट्रॉमा में नहीं जाता, पोस्ट ट्रॉमा प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, कि वो एक तसल्ली और एक तस्कीन बदतरीन सूरत हाल में भी कि मेरा रब मेरे साथ है, वो मुझे बेसहारा नहीं छोड़ेगा, वो मुझे उस ज़हनी कैफियत में जाने ही नहीं देगा, तो बचा रहता है इंसान। इसीलिए फकीर हर तरह की सिचुएशन को फेस करता है बड़े सुकून के साथ, वो बदतरीन हालात से गुजरता है, हत्ता कि मौत बेगुनाह फांसी चढ़ जाता है, लेकिन तब भी उसका चेहरा बड़ा पुरसकून होता है, खुदा पर रब ताला पर भरोसा उसको कायम व दायम रखता है, यही यकीन कि मेरा रब बेहतर फरमाएगा, या यही यकीन कि मेरे रब ने मेरे लिए जो भी पसंद किया है वो बेहतरीन है मेरे लिए, मुतमईन रहता है, इन प्रॉब्लम्स में नहीं जाता। इंशाअल्लाह ताला बख़ैर नेक्स्ट संडे बशर्ते ज़िंदगी। अस्सलामु अलैकुम।